किसी गैर मुस्लिम के मर जाने के बाद क्या उसके लिए दुआ की जा सकती है या नहीं। लोगों का ओपिनियन ये था और मेजॉरिटी लोगों का ओपिनियन ये था कि जो भी गैर मुस्लिम हैं, चूंकि वो गैर मुस्लिम हैं लिहाजा वो या तो काफिर हैं या वो मुशरिक हैं, और इसलिए उनके लिए दुआए मगफिरत नहीं की जा सकती। और जिस आयत का हवाला देते हैं वो ये है कि किसी नबी के लिए अल्लाह ताला ने बताया किसी नबी को ये जेब नहीं देता कि वो किसी मुशरिक के लिए दुआ करे जबकि वो जानता हो कि ये जहन्नुम का मुस्तहिक हो गया। ये मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ। तो इसमें आपका क्या ओपिनियन है, जो भी गैर मुस्लिम दुनिया से रुख्सत हो जाता है क्या वो सारे के सारे गैर मुस्लिम मुशरिक या काफिर ही होते हैं?
अभी मैंने इन इस्तलाहात की जो तफसील बयान की है उसी को सामने रख कर देखिए कि इस वक्त दुनिया में जितने लोग हैं क्या उन पर इन अल्फाज का हम इतलाक कर सकते हैं। मैं पूरे इत्मीनान के साथ कहता हूं कि आप भी ये गवाही देंगे कि नहीं कर सकते। यानी क्या हमने उन सब लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया है, दावत पेश कर दी है, उनके साथ हमारा मुकालमा हुआ है, उन्होंने इस दावत को सुनने के बाद जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में लोगों को दावत पहुंचाई उस तरह सुनने के बाद इसका इनकार कर दिया है, तो ऐसे लोगों की ज़रा फहरिस्त फराम कीजिए। कुरान मजीद में जिन लोगों के बारे में रोका गया है वो लोग थे कि जिनको अल्लाह के पैगंबर ने अपना पैगाम पहुंचाया, अल्लाह की किताब उन्हें पढ़कर सुनाई गई, अल्लाह का पैगंबर उनके दरमियान उनके सवालों के जवाब देने के लिए उनके इश्कालात दूर करने के लिए खड़ा रहा और वो उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुए या उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम ये बात नहीं मानेंगे, तो कुफर का इतलाक तभी करेंगे ना। यानी जो लोग इस वक्त हैं उन्होंने किस बात का इनकार किया है, कौन सी बात उनके सामने पेश की गई हम नहीं जानते, हम में से किसी को भी मालूम नहीं है। अगर अल्लाह ताला के इलम में है कि कोई बात उन तक वाकयतन पहुंच गई है और उन्होंने इनकार कर दिया है तो इसका फैसला तो अल्लाह ताला ही कर सकते हैं, हम तो जो कुछ देखेंगे उसकी बुनियाद पर राय कायम करेंगे। इसी तरह से दुनिया में इस वक्त बहुत से लोग हैं कि जो अपने आप को मुशरिक की हैसियत से पेश करते हैं, लेकिन क्या उनके शिर्क की गलती हमने उन पर वाज़े की है, उन्हें बताया है जाकर कि ये अकीदा ये नुक्ता नज़र सही नहीं है, उन तक अल्लाह की बात पहुंचाई है जिस तरह के पहुंचाने का हक है? आप गौर करेंगे कि ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। और मुनाफिक के लिए तो अल्लाह ही की तरफ से इत्तला आनी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास तो किसी के बातिन में झांकने का कोई ज़रिया नहीं है। उस वक्त तो अल्लाह ताला खुद बता रहे थे कि बाज़ लोगों ने निफाक इख्तियार कर लिया है, आज हम किसी के बारे में ये राय कैसे कायम कर सकते हैं? तो इसलिए इस वक्त दुनिया में जितने लोग भी बज़ाहिर इस्लाम कबूल नहीं किए हुए हैं वो सब नॉन मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम हैं। तो गैर मुस्लिमों के बारे में हम दुआ करेंगे ये कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे, उनकी नेकियों और उनके हसनात को कबूल करे, उनका कोई उज़र है तो उसको कबूल कर ले। दुआ करने के तरीके होते हैं, यानी वो दुआएं जो हम पूरे इत्मीनान के साथ किसी साले इंसान के लिए करते हैं वो और दुआएँ हैं। हमें मालूम होता है कि मुसलमानों में बाद लोग ना कभी नमाज की खबर रखते थे ना रोज़े से कोई दिलचस्पी थी, उनके लिए भी दुआ करते वक्त हम ज़रा एहतियात का उसलूब इख्तियार करते हैं। चुनाचे आप देखिए कि हमें जो जनाजे के लिए दुआ हमारे फुकहा ने मुकरर करके दी है उस दुआ में हम मैयत के लिए दुआ ही नहीं करते। उसकी वजह क्या है? वही एहतियात कि हम दूसरों के अहवाल से वाकिफ नहीं हैं। तो एक वो दुआ है कि जो हम अपने इल्म के मुताबिक अल्लाह ताला के हुजूर में कर देते हैं, और एक वो दुआ है कि जो हमारा इल्म है वो अल्लाह की इतला पर मबनी होता है तो उसमें या रुक जाते हैं या फिर दुआ करने की इजाज़त दे दी जाती है। तो ये बात जिस तरह अलल इतलाक कही जाती है ये किसी तरह भी दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला ने पैगम्बरों के वाक़यात कुरान में बयान किए हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बता दिया गया कि कौम लूत पर अल्लाह का अजाब आ रहा है और उन्होंने मुजादला शुरू कर दिया। अल्लाह ताला कहते हैं और बड़ी मोहब्बत से कहते हैं कि वो मेरे साथ झगड़ने लग गए कि आप पूरी कौम को तबाह कर देंगे। तो ये क्या चीज़ है? सिफारिश हो रही है अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला ने फरमाया इनमें 10 रास्तबाज भी नहीं है। इब्राहिम उसके बाद भी दुआ करते रहे, جب تک اللہ تعالیٰ روک نہیں دیتا کسی سے، تو ایک بندہ مومن بہت محبت کرنے والا ہوتا ہے، دوسروں کا خیرخواہ ہوتا ہے، وہ خیرخائی کے ساتھ اپنے علم کے لحاظ سے اللہ کی بارگاہ میں کوئی بات کہتا ہے۔ یہ کوئی فقہی معاملہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک معیار ہاتھ میں پکڑا دیا گیا ہے، آپ اس پر لوگوں کو ذبح کرتے چلے جائیں۔ آدمی کو دیکھیں گے، حالات کو دیکھیں گے، اپنے علم کے مطابق اللہ سے درخواست کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کسی درخواست کو چاہے گا قبول کرے گا، چاہے گا اپنے قانون کے مطابق رد کر دے گا۔ تو ہمیں تو یہ کرنا ہے کہ جو ہمارا علم ہے اس کے لحاظ سے کوئی عرضداشت پیش کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں۔ تو میرے نزدیک قرآن مجید میں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ جو آیتیں اس معاملے میں پیش کی جاتی ہیں ان کا تعلق ان عام غیر مسلموں سے ہرگز نہیں، یہ آیات ان لوگوں سے متعلق ہیں جن پر حجت تمام ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ صحیح بات کو سمجھنے کے باوجود قبول نہیں کر رہے۔ پھر ایک خاص مرحلے پر پیغمبروں کو روک دیا گیا کہ وہ ان کے حق میں کوئی بات کہیں۔ ہم تو قرآن مجید میں یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح کا قیامت میں مکالمہ نقل ہوا ہے، اور وہاں پر بھی انہوں نے ایسے اسلوب میں بات کی ہے کہ جس میں صاف الفاظ میں تو نہیں کہا، لیکن سچی بات ہے کہ آپ اس جملے کو پڑھیے تو سیدنا مسیح علیہ السلام نے گویا اپنی قوم کی خیرخائی کی بات کی ہے، اور ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمتی کو اپیل کیا ہے۔ تو اس لیے یہ سب چیزیں قرآن میں موجود ہیں، چیزوں کو ان کے سیاق سباق سے ہٹا کے اس طرح کے فقہی فتوے دینا، یہ میرے نزدیک کسی طرح صحیح نہیں۔